ये आकाशवाणी है। अब आप दिव्या तोमर से समाचार सुनिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय उद्यमियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाने के लिए आज नई दिल्ली में ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उद्यमियों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़े नियमों, व्यापार समझौतों, व्यापार साझेदारी, सीमा शुल्क और विदेशी खरीदारों की सारी जानकारी एक ही जगह उपलब्ध है। श्री गोयल ने कहा कि ये प्लेटफॉर्म विभिन्न मंत्रालयों, संस्थाओं और संगठनों के बीच व्यापक सहयोग से बनाया गया है। इसमें कई महत्वपूर्ण आंकड़े दिए गए हैं। इसका नया संस्करण जल्द ही हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में भी उपलब्ध होगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि ई प्लेटफॉर्म से वैश्विक बाजार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ेगी। श्री गोयल ने कहा कि उनका मंत्रालय इस प्लेटफॉर्म पर व्यापार से संबंधित आंकड़े सुगमता से उपलब्ध कराने के लिए अन्य मंत्रालयों के साथ बातचीत कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये सिलिकॉन कूटनीति का युग है और भारत सेमीकंडक्टर पावर हाउस बनने के लिए हर संभव कदम उठाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार देश में चिप उत्पादन की संख्या बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है ताकि हर डिवाइस को भारत में निर्मित चिप से लैस किया जा सके। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि डिजिटल इंडिया पहल की सफलता का प्रभाव देश में देखा जा रहा है। इससे पहले ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा रूपांतरण वैश्विक चिंताएं हैं और हरित हाइड्रोजन को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने कहा कि सहयोग से उत्पादन बढ़ाने, लागत कम करने और बुनियादी ढांचे के निर्माण में तेजी से प्रगति की जा सकती है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज सूचना और संचार प्रौद्योगिकी तथा आतंकवाद से जुड़े मुद्दों सहित आधुनिक सुरक्षा चुनौतियों का उल्लेख करते हुए कहा कि ब्रिक्स ढांचे के भीतर संयुक्त प्रयासों से इनका समाधान तलाशा जाना चाहिए। वे आज रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में ब्रिक्स देशों के सुरक्षा सलाहकारों की बैठक में बोल रहे थे। श्री डोभाल की रूस यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ये मानकर चल रहे हैं कि भारत और चीन दोनों यूक्रेन संघर्ष को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। भारत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अमरीका में कथित भारत विरोधी टिप्पणियों के लिए उनकी कड़ी आलोचना की है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि राहुल गांधी जिस तरह की भ्रामक और आधारहीन बातें कह रहे हैं वो बेहद शर्मनाक है। श्री सिंह ने कहा कि भारत में सिख समुदाय को गुरुद्वारों में पगड़ी पहनने की अनुमति नहीं है और उन्हें धर्म के अनुसार व्यवहार करने से रोका जा रहा है। राहुल का ये बयान पूरी तरह से निराधार है। उनका ये भी दावा पूरी तरह से गलत है कि एनडीए सरकार आरक्षण खत्म करना चाहती है। भारत चीन सीमा विवाद पर उनके दावों को रक्षा मंत्री ने भ्रामक और तथ्यों से परे बताया। पार्टी के वरिष्ठ नेता और गृहमंत्री अमित शाह ने भी राहुल गांधी की टिप्पणियों पर नाराजगी व्यक्त की है। केंद्र ने खालिस्तानी समर्थक समूह 664 जस्टिस पर प्रतिबंध लगाने के लिए अगले 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। ये प्रतिबंध गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत लगाया गया है। संगठन ऐसी गतिविधियों में लिप्त रहा है जो देश की अखंडता और सुरक्षा के लिए खतरा है। केंद्र ने 2019 में संगठन पर प्रतिबंध लगाया था। दिल्ली की एक अदालत ने आबकारी नीति घोटाले मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 25 सितंबर तक बढ़ा दी है। इससे पहले केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने भ्रष्टाचार मामले में मुख्यमंत्री और अन्य अभियुक्तों के खिलाफ अदालत के समक्ष पूरक आरोप पत्र दायर किया था। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने आज अपनी चौथी सूची जारी कर दी है। सूची में 21 उम्मीदवार शामिल हैं। पार्टी ने सोनीपत से देवेंद्र गौतम और गुड़गांव से निशांत आनंद को चुनाव मैदान में उतारा है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को डोडा में रैली करेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।